नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत और दक्षिण कोरिया ने खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग और औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना के लिए 4 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में दोनों देश शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। साझा प्रयासों के माध्यम से दोनों देश एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में योगदान देना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते किए हैं।
आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई समग्र प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति ली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कोरिया के बीच 27 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 4 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में भारत कोरिया व्यापार मंच में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा को संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद पूरे देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर है और वितरकों में किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार प्रभावी प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कल सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऊर्जा तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विचारों का आदान प्रदान किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। उधर तमिलनाडु में भी प्रचार चरम पर है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ऑफलाइन सत्यापन के लिए एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। इसके अंतर्गत रोल आउट के 3 महीने के भीतर 100 संस्थाओं ने ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं ओवीएसई के रूप में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। ये उपलब्धि आधार ऑफलाइन के माध्यम से सुरक्षित और कागज रहित सत्यापन को सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो सेवा प्रदाताओं और आम जनता दोनों को सशक्त बनाती है। रेलवे अगले 3 महीने में देशभर में कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां संचालित करेगा। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक के दौरान ये रेलगाड़ियां 18,262 फेरे लगाएंगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 7वें ओवर में 3 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में गुजरात 6ठे और मुंबई 10वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।